अगली सुबह का उजाला इस बार होटल की दीवारों से नहीं, हवेली की मोटी पुरानी खिड़कियों से छनकर आने वाला था। और शायद यही वजह थी कि विश्वनाथ की नींद आज कुछ ज्यादा सुकून के साथ खुली। यात्रा लंबी थी लेकिन थकान नहीं थी। कार जैसे जैसे शहर की सीमाएं छोड़ती गई, रास्ते में खेत, पेड़, खुला आसमान दिखाई देने लगा। विश्वनाथ खिड़की से बाहर देखता रहा, मोबाइल जेब में था लेकिन उसने उसे निकाला नहीं। उसे पता था हवेली में कोई उसका इंतजार कर रहा है और उस इंतजार में शब्दों से ज्यादा आंखों की जरूरत होगी। दोपहर ढलते ढलते हवेली के ऊंचे फाटक के सामने गाड़ी रुकी। भारी लकड़ी का फाटक खुला और जैसे ही कार अंदर दाखिल हुई, हवेली का आंगन जिंदगी से भर गया। रत्ना देवी सबसे आगे खड़ी थी, सफेद किनारी वाली साड़ी, माथे पर सधा हुआ टीका और आंखों में वही ठहराव जिसमें ममता भी थी और गरिमा भी। उनके पीछे शकुंतला और नौकर चाकर सब जैसे उसी पल के लिए रुके हुए थे। गाड़ी से उतरते ही रत्ना देवी ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा। आ गया मेरा बेटा, उनकी आवाज में बधाई से ज्यादा राहत थी। विश्वनाथ ने झुककर उनके पैर छुए। आपका आशीर्वाद रहा माँ, शकुंतला ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। और कॉन्ट्रैक्ट भी, पूरा इलाका जान गया है कि हवेली के बेटे ने फिर बाजी मार ली। पीछे से तालियों की हल्की सी गूंज उठी। कोई फूलों की माला ले आया, किसी ने मिठाई आगे बढ़ा दी। विश्वनाथ सब स्वीकार करता रहा सधे हुए ढंग से, लेकिन उसकी नजर भीड़ में कुछ ढूंढ रही थी। और तभी आंगन के एक कोने में खंभे के पास खड़ी थी श्यामली। हल्के रंग का साड़ी, बाल सधे हुए, चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बस आंखें, वो आंखें जो बहुत कुछ कह रही थी। वो आगे नहीं बढ़ी, ना कोई बधाई दी, ना कोई सवाल पूछा। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ की नजर उससे मिली, उसका सीना हल्का हो गया। श्यामली की आंखों में खुशी थी, फिक्र भी, और वो अपनापन जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। विश्वनाथ ने कुछ पल उसे देखा, फिर नजर हटा ली, जैसे सबके सामने ज्यादा देर रुकना अपने जज्बात खोल देना हो। चलो अंदर चलो, रत्ना देवी ने कहा, सब इंतजार कर रहे थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही वही पुरानी गंध, लकड़ी, धूप और समय की। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, पुरखों की नजरें और हर कोना जैसे उसे पहचानता हो। ड्राइंग रूम में बैठते ही बधाइयों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कोई कह रहा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो सालों में मिलता है। कोई बोला, अब कारोबार और फैलेगा। विश्वनाथ सब सुनता रहा, कभी सिर हिलाया, कभी हल्की मुस्कान दी। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे से एक और मौजूदगी दाखिल हुई। सख्त चाल, सीधी नजर और चेहरे पर वो मुस्कान जो पूरी तरह आंखों तक नहीं पहुंचती। सुषमा देवी। कमरे में एक पल को जैसे हल्की सी खामोशी उतर आई। रत्ना देवी ने औपचारिकता से कहा, आइए दीदी, आप भी बैठो, विशु की जीत की खबर तो तुम्हें भी होगी। सुषमा देवी ने आगे बढ़कर विश्वनाथ को देखा। उनकी आंखों में गर्व था, छुपा हुआ नहीं, खुला। बधाई हो, उन्होंने कहा, तुमने नाम रोशन कर दिया। विश्वनाथ उठा, उनके सामने खड़ा हुआ और अगले ही पल पूरे कमरे के सामने उसने जो कहा वो किसी ने सोचा नहीं था। मौसी जी, उसकी आवाज में वही ठहराव था, इतने दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विश्वनाथ ने आगे कहा, आप बताइए, मेरे पीछे से यहां सबने आपका ख्याल रखा? कमरे में सन्नाटा छा गया। श्यामली ने पहली बार नजर उठाकर सुषमा देवी को देखा और फिर विश्वनाथ को। सुषमा देवी कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा हंसी का पुट उनकी आवाज में आया जो हंसी कम तंज ज्यादा थी। ख्याल, उन्होंने दोहराया, यहां सब ऐसे ही हैं बेटा। उन्होंने चारों तरफ देखा, किसी ने कोई खास ख्याल नहीं रखा। कमरे में हल्की बेचैनी फैल गई, लेकिन उन्होंने विश्वनाथ की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम आ गए हो। उनकी आवाज थोड़ी नरम हुई, अब लगाम तुम्हें ही खींचनी होगी। ये वाक्य सिर्फ एक शिकायत नहीं था, ये एक इशारा था, एक दावा भी। विश्वनाथ ने बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया, अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उसने शांत सार में कहा, तो अब रहेगी नहीं। उसकी नजर एक पल के लिए श्यामली से मिली और जैसे उस एक नजर में बहुत कुछ तय हो गया। रत्ना देवी ने माहौल संभालते हुए कहा, अरे ये सब बातें बाद में होंगी, पहले खाना लगे। सब उठने लगे। श्यामली भी मुड़ी, लेकिन तभी विश्वनाथ की आवाज आई, श्यामली। बस एक शब्द, वो रुकी। सबके सामने उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखा। विश्वनाथ ने कुछ और नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो वही था जो कल रात पार्टी में नहीं कह पाया था, मैं आ गया हूं। श्यामली ने हल्का सा सिर झुका दिया, जैसे जवाब दे रही हो, अब सब ठीक होगा। हवेली की गलियारों में फिर से आवाजें गूंजने लगी, जिंदगी अपनी रफ्तार में लौट आई। लेकिन हवेली जानती थी, आज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लौटा है, आज उसके भीतर कई पुराने रिश्ते, अधूरे सवाल और दबे हुई सच भी फिर से सांस लेने लगे हैं, और ये लौटना शुरुआत भर है। विश्वनाथ सीधे अपने कमरे की ओर चला आया। कमरे में वही पुरानी पहचान थी, भारी पलंग, लकड़ी की अलमारी और खिड़की से छनती दोपहर की हल्की रोशनी। उसके पीछे पीछे शामली भी आ गई बिना कुछ कहे। वो अलमारी के सामने खड़ी हो गई, दरवाजा खोला, एक कपड़ा निकाला, फिर पलट कर देखा जैसे खुद से ही असंतुष्ट हो। नहीं, बुदबुदाकर उसे वापस टांग दिया, दूसरा निकाला, फिर तीसरा, कभी शर्ट कभी कुर्ता, कभी रंग बदला कभी कपड़ा। उसकी हर हरकत में एक घबराहट थी, जैसे वो जानती हो कि कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत सी अनकही बातें भी मौजूद हैं। विश्वनाथ पलंग के पास खड़ा उसे देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, कल रात की कमी, आज की राहत, या बस इतना कि मैं आ गया हूं। लेकिन शामली की पीठ उसकी तरफ थी और उस पीठ में दूरी साफ छलक रही थी। ये ठीक रहेगा, उसने बिना पलटे पूछा। विश्वनाथ ने जवाब नहीं दिया। वो फिर अलमारी में हाथ डालने लगी, जैसे सवाल का जवाब कपड़ों में ढूंढ रही हो। शामली, उसने आखिरकार कहा। उसका हाथ एक पल को रुका, लेकिन वो पलटी नहीं। हम्म, आवाज में वही झिझक। विश्वनाथ ने दो कदम आगे बढ़ाए। कमरे में दूरी कम हुई, मगर शामली ने एक कदम पीछे हटा लिया। यही पल था। विश्वनाथ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, ना जोर से लेकिन इतनी मजबूती से कि वो रुक जाए। शामली चौंकी। विश्व, वो पूरा बोल भी नहीं पाई। अगले ही पल उसकी पीठ दीवार से लग चुकी थी। विश्वनाथ उसके सामने खड़ा था, इतना करीब की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखे, शामली को घेरे हुए। कोई छुअन नहीं थी, फिर भी पल बेहद गहरा था। कब तक भागती रहोगी, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन ठहरी हुई। शामली की आंखें झुक गई, होंठ कांप गए। मैं भाग नहीं रही, उसने धीरे से कहा, बस बोल नहीं पा रही। विश्वनाथ ने उसका चेहरा उंगली से ऊपर नहीं उठाया, बस थोड़ा झुककर कहा, तो मत बोलो। उसकी आंखें अब शामली की आंखों के सामने थी। मैं समझ लूंगा। शामली की आंखें भर आईं और उसी पल सारी दूरी बस एक दीवार जितनी रह गई।